समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। राहुल और सिमरन से ना तो उनकी बात हुई थी और ना ही मुलाकात। अन्वय और आन्या के बीच तकरार बरकरार थी, पर प्यार अभी दिखाई नहीं दे रहा था। आन्या की अब आदत बन गई थी रोज सुबह छुपकर अन्वय को व्यायाम करते देखना। अन्वय भी ये बात जानता था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता था। अब उसने बनियान पहनकर व्यायाम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से आन्या उदास हो जाती थी, पर अन्वय मुस्कुराता रहता था। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आन्या उसकी मस्क्युलर बॉडी देखने के लालच में सुबह सुबह खिड़की से चिपकी रहती थी। नियम के मुताबिक एक दिन अन्वय काम करता तो अगले दिन आन्या, सुबह का नाश्ता वो बनाती तो रात का भोजन अन्वय के हिस्से में आता। आन्या अब उसकी किताब लेकर पढ़ लेती थी। अब भी वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती थी। अन्वय को अपने उल्टे सीधे सवालों से परेशान करती रहती थी। अन्वय ज्यादातर खामोश ही रहता, पर आन्या लगी रहती अपनी बकबक में। शायद अन्वय को भी उसकी बकबक की आदत सी हो गई थी। उसके आते ही आन्या की जुबान चलनी शुरू हो जाती थी और अन्वय खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता था। दोनों के बीच अब भी बात बात पर बहस हो जाती थी। अन्वय जितना उस पर गुस्सा करके उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा आन्या उसकी ओर खिंच रही थी। उधर आन्या के जाने के बाद उसकी चिट्ठी पढ़कर कावेरी जी ने एक बार फिर आन्या के बारे में उल्टी सीधी बातें मिस्टर सिन्हा के दिमाग में भर दी, जिस वजह से उन्होंने आन्या को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसे मरा हुआ मान लिया। पर कावेरी जी उसे ढूंढ रही थी, आखिर वो उनकी लॉटरी की टिकट थी, तो वो इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से कैसे निकलने दे सकती थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, वरना उनकी बदनामी हो जाती। बल्कि निहाल को उसे ढूंढने के लिए कहा था और निहाल उसे ढूंढ भी रहा था। अन्वय और आन्या को साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत गया था, पर उनके बीच कुछ नहीं बदला था। आज सुबह आन्या की नींद नहीं खुली। अन्वय व्यायाम के बाद नहाने चला गया। अचानक ही आन्या झटके से उठकर बैठ गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो झट से बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने बिस्तर की चादर चेक की, फिर बाथरूम की ओर दौड़ी तो देखा दरवाजा बंद था। आज उसने उसके बाहर आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अन्वय क्या है, तुम मुझे बाथरूम में भी चैन से नहीं रहने देती हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अन्वय की गुस्से भरी आवाज आन्या के कानों में पड़ी। उसने दरवाजा खटखटाते हुए आगे कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज बाहर आ जाओ। कुछ देर इंतजार नहीं किया जा रहा तुमसे, ये मेरा समय है ना, तो इंतजार करो मेरे निकलने का, एक बार फिर अन्वय गुस्से से चिल्लाया। आन्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने भारी गले से कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज मेरी बात समझो, मेरा बाथरूम जाना बहुत जरूरी है। क्यों, तुम क्या बच्ची हो जो कुछ देर कंट्रोल नहीं कर सकती? अन्वय के सवाल सुनकर अब आन्या ने रुआंसी होकर कहा, यार समझा करो, लड़की हूँ मैं, इतने पत्थर दिल तो मत बनो, प्लीज मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने दो। अन्वय उसकी आवाज़ में आए भारीपन को महसूस कर गया। उसने जल्दी से नहाकर कपड़े पहने और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, अगर अभी तुम नहीं निकलते ना तो मैं तुम्हारा कत्ल कर देती। आन्या ने इतना कहा और झट से अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अन्वय कुछ समझ नहीं सका। वो हैरान परेशान सा बाथरूम के दरवाजे को देखता रहा, जो अब बंद हो चुका था। 10 मिनट बीत गए, पर आन्या बाहर नहीं निकली तो अन्वय किचन में चला गया। वैसे तो नाश्ता आन्या बनाती थी, पर आज उसने नहीं बनाया था, तो अन्वय ही नाश्ता बनाने लगा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं था। उसने सैंडविच बनाया और वापस बाहर आया तो बाथरूम अब भी बंद देख कर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हुए सवाल किया, आन्या आर यू फाइन, तुम पिछले पौने घंटे से अंदर बंद हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तुम नाश्ता करके चले जाना और बिस्तर के पास मत जाना प्लीज, आन्या ने अंदर से ही उससे रिक्वेस्ट की। उसकी बात अन्वय को कुछ ठीक नहीं लगी। उसने फिर से सवाल किया, कुछ हुआ है क्या, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ है और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बस तुम चले जाओ बाकी मैं संभाल लूंगी, आन्या ने फिर से अंदर से कहा। अन्वय ने एक दो बार और पूछा, पर आन्या ने उसे कुछ नहीं कहा, तो अन्वय ने खींचते हुए कहा, ठीक है मत बताओ, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम को जानने में, और ना ही फालतू का वक्त है कि यहाँ खड़े होकर तुम्हारे कुछ बताने का इंतजार करूँ, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, नाश्ता रखा हुआ है, मन करे तो बाथरूम से बाहर आकर खा लेना। इतना कहकर वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर तैयार होने लगा। अचानक ही बाल सेट करते वक्त उसके कानों में आन्या की बात गूंजी कि बिस्तर के पास मत जाना, और उसके कदम उस तरफ पड़ गए जहाँ आन्या सोती थी। उसने कुछ सोचकर चादर हटाई और अगले ही पल घबरा कर वापस चादर बिस्तर पर डाल दी और 2 कदम पीछे हट गया। बिस्तर की चादर पर हल्का सा खून का निशान देखकर वो घबरा गया कि कहीं आन्या को कहीं चोट तो नहीं आ गई। वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ गया और फिर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, आन्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट आई है क्या? बिस्तर पर खून का निशान है, अगर तुम्हें कहीं चोट आई है तो बाहर आओ, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अंदर बैठी आन्या ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और अगले ही पल वो गुस्से से चीखी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, क्यों गए तुम बिस्तर के पास? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने पहले कभी ऐसे बर्ताव नहीं किया है। अन्वय की चिंता भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, पर आन्या अब भी गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हें कब से मेरी चिंता होने लगी? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है अब, इतना क्या भड़क रही हो, अगर चोट लगी है बाहर आओ, हम डॉक्टर की चलते हैं। अन्वय के इतना कहते ही आन्या गुस्से से चीखी,
मुझे कोई चोट नहीं लगी है और ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, पर तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है तो जाकर डॉक्टर को दिखा लो। अगर तुम्हें चोट नहीं लगी तो वो निशान